दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था के धीमे पड़ने का प्रभाव ऑस्ट्रेलिया पर भी पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड पार्टनर यानी द्विपक्षीय व्यापार साझेदार है। तो क्या ऐसा संभव है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार और बढ़ सकता है? यही जानने के लिए हमने पहले बात की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्री प्रोफेसर AR प्रसाद से और उनसे पूछा कि फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापारिक संबंध कहाँ पर है।
वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार में 10वां बड़ा साझेदार रहा है, जिसकी मात्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर 18 बिलियन यानी कुल व्यापार का 3% ही रहा है। यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2009-10 में ऑस्ट्रेलियन डॉलर 22 बिलियन के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया था, जो कि कुल व्यापार का 4% से भी अधिक था। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के आयात की तुलना में निर्यात के दृष्टिकोण से भारत अपेक्षाकृत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की भूमिका ऑस्ट्रेलिया के आयात में बहुत अच्छी नहीं बल्कि शालीन है। पिछले कुछ समय तक भारतीय अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया मर्चेंडाइज गुड्स जैसे गोल्ड, कोल, कॉपर ओर्स के स्तर को 2014 में 2010 की तुलना में काफी नीचे गिराया है, लेकिन गोल्ड इंपोर्ट को इंडिया में रिस्ट्रिक्ट किया गया था क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट उतना कम्फर्टेबल नहीं था। इसलिए भारतीय अधिकारियों ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर गोल्ड इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन भविष्य में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार में द्विपक्षीय वार्ता इसको बायलैटरल ट्रेड भी कहते हैं तथा विनियोग प्रवाह इन्वेस्टमेंट फ्लो की अपार संभावनाएं। दोनों देशों के मध्य विनियोग संबंध कम विकसित है। 2014 में भारत ऑस्ट्रेलिया का 23वां बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विनियोग का स्रोत रहा है। इस समय ऑस्ट्रेलिया में भारत का विनियोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, सॉफ्टवेयर तथा IT सर्विसेज जैसे प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। द्विपक्षीय विनियोग की संभावनाओं को मजबूती से आगे बढ़ाने में ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA जो 2011 में लॉन्च हुआ था, इसकी भूमिका इन क्षेत्रों में उपस्थित बहुत कुछ बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत में SMEs स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस के विकास की काफी संभावनाएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हेल्थ मार्केट, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड मशीनरीज, हाई क्वालिटी फूड और वाइन एक्सपोर्ट भी शामिल है। अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत की सेवाओं के निर्यात में भी नाटकीय रूप से परिवर्तन देखा गया है। टेली कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन तथा अन्य बिजनेस सर्विसेज में यह उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
वहीं हमने मोनाश यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्री डॉक्टर विनोद मिश्रा से सवाल किया कि चीन की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के चलते क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय व्यापार में तेजी आ सकती है।
देखिए, अगर हम लोग चीन की स्थिति देखें तो एक अहम मुद्दा ये है कि चीन की अर्थव्यवस्था में धीमापन आया है और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे एक पहली अहम चीज ये है कि चीन हमारे यहाँ से कच्चा लोहा, कोयला और लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टर था। ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिनकी इंडिया में अभी डिमांड बढ़ रही है, तो ये तो गारंटीड है और तय है कि हिंदुस्तान कुछ इस कमी को पूरा करेगा। हिंदुस्तान में शहरीकरण अभी काफी कम है चाइना की तुलना में, विद्युतीकरण अभी काफी कम है और विकास की गति चाइना से मतलब ट्रेडिशनली धीमी रही है। अभी मोदी सरकार ने पिछले 2 साल में इन दिशा पे काफी ज्यादा जोर दिया है और बहुत सारे तेजी से जो है विद्युतीकरण किया जा रहा है, बहुत सारी सड़कें बन रही हैं, तो इन सभी सामानों की बढ़ोतरी होगी। ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि जितने चाइना के स्लो डाउन होने से गैप हुआ है उतना पूरा हो पाएगा कि नहीं इंडिया की वजह से, लेकिन ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि चाइना की अर्थव्यवस्था को स्लो होने से कुछ ना कुछ तो उसका गैप जो है इंडियन इकोनॉमी भर सकती है।
जी अच्छा विनोद जी, अगला सवाल ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो व्यापार है वो लॉपसाइडेड है अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें, क्योंकि ज्यादा यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है और भारत ज्यादा इंपोर्ट करता है, आयात करता है। तो आगे बढ़कर अगर जैसे और व्यापक स्तर पर व्यापार होता है तो आपको क्या लगता है कि इसमें थोड़ा सा संतुलन आएगा या इसी प्रकार रहेगा व्यापार?
देखिए पल्लवी, इसमें जरा 2-3 चीजें देखने लायक हैं। पहली चीज तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर यह है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें मतलब 125 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया में बहुत सारा जो उत्पादन होता है वो एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि इंडिया के अंदर ही खपत करने के लिए होता है। इंडिया में विद इन इंडिया बहुत सारा ट्रेड होता है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ट्रेड होता है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में बहुत सारा ट्रेड होता है। तो इंडिया डोमेस्टिकली बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए तो साइज के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया एक बहुत छोटा मार्केट है डोमेस्टिकली। यहाँ पर विद इन ऑस्ट्रेलिया कंज्यूम होने के लिए ज्यादा पैदा नहीं होता है। तो हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगभग बराबर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। ज्यादातर टाइम यही होगा कि चूंकि बड़ा बाजार भारत का है तो भारत बड़ा इम्पोर्टर होगा ऑस्ट्रेलिया की तुलना में। लेकिन अभी जैसे अगर आपने इस दिशा में थोड़ा ध्यान दिया हो तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बारे में निगोशिएशंस चल रहे हैं दोनों सरकारों के बीच में। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों को जो है के बाजारों को थोड़ा और खोला जाए एक दूसरे के लिए, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा एस्टेब्लिश किया जाए, और जिसकी वजह से ये लॉप साइडेड ट्रेड थोड़ा तो कम होने की उम्मीद है।
और बस ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसे विशेष क्षेत्र है जहां पर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से निवेश भारत में जा सकता है या भारत से निवेश ऑस्ट्रेलिया में आ सकता है?
देखिए, जैसे आज की डेट में जो स्थिति है उसमें यह है कि भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मेनली आपका खनिज और धातुओं का इम्पोर्ट करता है, बहुत सारा कच्चा माल और बहुत सारा बना बनाया धातु की शीट्स रॉड इत्यादि का इम्पोर्ट करता है। और दूसरा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया से वो है आपका एजुकेशन, जो यहाँ पर हिंदुस्तान से छात्र पढ़ने आते हैं और जो लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया घूमने आते हैं। ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान से आपके कपड़े, डायमंड, ज्वेलरी, दवाइयाँ, कारपेट, चाय, ये सब इंपोर्ट करता है, जो कि काफी कम है इंडिया की तुलना में देखा जाए। उसकी एक छोटी सी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इतनी कम है कि उतना ज्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। आगे चल के जो है एक बड़ा सेक्टर जिसमें हम लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, वो है आपका माइनिंग सेक्टर। बहुत सारी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है आपकी स्टील की, कोयले की, आयरन ओर की और एनर्जी की, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ हिंदुस्तानी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया में निवेश करना चाहें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहें। जैसे इस दिशा में कुछ प्रगति हुई भी है। फ्यूचर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जो है ऑस्ट्रेलिया की कुछ सर्विसेज इंडस्ट्री इंडिया में एक्सपेंड करें और इन्वेस्टमेंट करना चाहें। जैसे इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है बैंकिंग सर्विसेज का, और यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं जिनको एक बड़ा बाजार मिल सकता है हिंदुस्तान में ऑपरेशन स्टार्ट करके। दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर, ये इंडिया में काफी बड़ा इंश्योरेंस का मार्केट है जिसमें यहाँ की वेल डेवलप्ड इंश्योरेंस इंडस्ट्री और फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री, पेंशन फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री के निवेश करने के लिए बहुत स्कोप है
जी।
इंडिया से यहाँ पर जो है चूंकि मैन्युफैक्चरिंग लगभग यहाँ पर खत्म हो गई है, तो इंडिया में आजकल एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है मेक इन इंडिया, आपने सुना होगा उसके बारे में
जी।
तो उम्मीद है कि शायद मैन्युफैक्चरिंग का जो इम्पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया में बढ़ेगा, जिससे थोड़ा ट्रेड बैलेंस भी अच्छा होगा, और यह भी संभव है कि शायद कुछ इंडियन कंपनी यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें।
एक आखिरी सवाल विनोद जी आपसे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण बाजार होगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक हालांकि है लेकिन उस तरह की तरजीह शायद नहीं दी जाती भारत को जैसा कि कुछ और एशियाई देश जैसे जापान है, चाइना है, ऐसा प्रतीत होता है।
जी देखिए, बहुत तेजी से भारत उतना इम्पोर्टेंट मार्केट नहीं बन पाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक थोड़ा हम लोगों को रियलिस्टिक रहना चाहिए। आज की डेट में हमारे लिए सबसे ऑस्ट्रेलिया की नजर से सबसे बड़ा मार्केट है चाइना और जापान, लेकिन यह है कि इसमें तेजी से बढ़ोतरी आने की संभावना है क्योंकि भारत में अभी भी बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड डिमांड है, जिसे कहते हैं कि भी बहुत शहरीकरण होना बाकी है। और दूसरा यह है कि चूंकि अगर आप चाइना से तुलना करिए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में एक कॉमन चीज ये है कि दोनों ही डेमोक्रेटिक देश हैं, दोनों में ही एक कॉमन सेट ऑफ लॉज हैं और सेम तरीके से जो है रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं। तो आशा जरूर की जा सकती है कि भविष्य में एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होगा, लेकिन बहुत तेजी से तो नहीं उम्मीद है, लेकिन हाँ यह है कि भविष्य में बढ़ेगा ही हिंदुस्तान का महत्व।